ओम शांति। सभी लोग एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। हम सब प्यारे प्यारे बाबा के बच्चे, ये बाबा ने ही हमको टाइटल दिया है। तुम बच्चे बहुत बहुत खुश नसीब बच्चे हो, भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा, तुम विश्व के क्षितिज पर आधार मूर्त हो, पूर्वज आत्माएं हो। आप सभी अपने मन के अंदर सोचें तो भगवान ने ये जो ऊंचे ऊंचे हमको टाइटल दे के हमको नूरे रतन बनाया, नजरों का नूर बनाया, उसके पीछे जरूर कुछ हमारे कर्म का फल है कि हमने ईश्वर को पहचान लिया और ईश्वर को पा लिया। और आज वो हमारे लिए बंधाईमान है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ दिव्य मूर्त बनाने का बाबा ने तो संकल्प ले ही लिया है, हमने उस गहराई तक जाने के लिए क्या क्या समझ लिया है और उसको हमने सत्य के पथ तक जाकर कितना अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, ये एक समझने की बात है। हम जब यज्ञ में आए थे तो दादियां हमको सिखाती थी कि बाबा का एक एक रतन लाखों लाखों रुपयों का है। तो हमारी स्टेज बहुत छोटे उम्र की थे, तो मैं अपने अंदर ये आश्चर्य करती थी, ये लाखों रुपयों का एक एक रतन है, आखिर तो इसके पीछे क्या रहस्य है। और धीरे धीरे बाबा ने ही मुरलियों में स्पष्ट किया कि बच्चे, मैं तुम्हारे भाग्य के अंदर धन धान्य नहीं भरता हूँ, लेकिन तुम्हें तरीका सिखाता हूँ कि तुम अपने भाग्य को श्रेष्ठ कर्म करके कैसे ऊंचा बना सकते हो। तो आज मैं एक बात पर विचार कर रही थी कि जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं और धैर्य से उसमें पानी देते हैं, सूर्य का प्रकाश भी देते हैं, और फिर भी हम देखते हैं पौधा इतना ऊंचा ग्रोथ पे नहीं आ रहा है, और जल्दबाजी में अगर हम उसे फिर ज्यादा पानी दे देंगे या अपनी सहन करने की शक्ति के अनुसार उसको फिर थोड़ा सा हिला देंगे तो वो पौधा जो अंकुरित हो रहा है उसमें बाधा आ जाती है। हम जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, हमको भी हजारों आत्माओं के सिजरे को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बाप के प्रति प्रीत बुद्धि बनाने के लिए अनेक उनके अंदर बाबा ने हम बच्चों को बताया है। बच्चे, आपको जो भी आत्माएं मिलेंगे जरूर से वो तमोगुण से पूर्ण आत्माएं होंगी, और उन तमोगुणी आत्माओं को जब आप बाप का परिचय देके बाबा का बनाने लगेंगे तो कुछ उनके अवगुण भी आपके एहसास में आते हैं। और मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार से देखा है कि किसी आत्मा को मोल्ड करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए जितना जितना हम उसके कमियों को सहन करते जाते हैं और उसकी कमियां होते हुए भी इतना साइलेंट में रहते हैं कि सोचते हैं अगर अभी हमने थोड़ा इनको अंगुली लगा दी या केवल इतना ही बता दिया कि तुम्हारी यहाँ ये गलती है तो हो सकता है ये पौधा मुरझा जाए, इतना कमजोर है ये पौधा। तो जब हम इतनी सहन शक्ति की गहराई में अपने को संभाल ले जाते हैं, कितनी भी बात उनकी कमियों की सामने आती है लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी हम साइलेंट रहते हैं। मालूम नहीं, ऐसा ना हो कि समय से पहले हम अपनी फोर्सिप लगा दी तो वो ऑपरेशन के बदले और ही घाव बन जाएगा और वो आत्मा बाप से बेमुख हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपने जीवन के अंदर ये बात देख रही हूं कि समय की जैसी रफ्तार है उस अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान में भी आत्माएं आ रही हैं, लेकिन वो अपने संस्कारों से बहुत कमजोर हैं। वो बहुत जल्दी अपनी गलती को भी नहीं स्वीकार कर पाती हैं, और अगर उनकी गलती को थोड़ा सा भी हम बताते हैं तो उनको बहुत फीलिंग आ जाती है, अपने को मायूस अनुभव करने लगती हैं। तो दादियों ने हमें बहुत अच्छा सिखाया, दादी जानकी ने कहा कि अगर तुम किसी की गलती को बताओ और वो अपनी गलती को ना माने तो बताना बेकार हो गया, उसको दुख देना हो गया। सीधा ही उनको ऐसा तैयार करते जाएं हम कि उनकी बाबा की मुरली के प्रति प्यार बढ़ता जाए। आप मुरली को प्यार से सुनने तक उनको तैयार कर लो, उनका बेस जो है वो मुरली को प्रतिदिन वो चात्रक होके सुनते रहें या पढ़ते रहें, क्लास में आते रहें, क्लास में नहीं आते हैं तो मुरली लेके पढ़ते रहें। उनके अंदर मुरली के प्रति यदि धीरे धीरे प्यार बढ़ता जाएगा तो ये जो 3 पेज की मुरली होती है ये हमें बहुत कुछ कह जाती है, सिखा जाती है। मैं तो जब मुरली पढ़ती होती हूँ अपने क्लास में तो मैं कहती हूँ, देखो बाबा कहता है ना, बच्चे बाप तो बहुत हीरे मोती तुमको लुटाने वाला होता है, लेकिन तुम बच्चे माया के वशीभूत हो जाते हो, माया तुम्हें ठूसा मार देती है ना, तुम्हें मगरूर अहंकार के वश मगरूर बना देती है। तो हमने कहा देखो बाबा कहता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? बोला बहुत प्यारा लगता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं बहुत प्यारा लगता है। हमने कहा अगर कोई मनुष्य आपको कहे कि तुम तो बहुत अहंकारी हो और बहुत मगरूर हो तो कैसा लगता है? बोला नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगता? किसी मनुष्य ने कहा, वो भी परफेक्ट नहीं है। हम भी अगर किसी को कहेंगे हो सकता उसको बुरा लग जाए, लेकिन बाप जो हमारा है, शिव बाबा जो हमारा पिता है, वो जो हमको कहेगा हमको प्यारा लगेगा। क्यों? वो प्यार का सागर है। तो धीरे धीरे हम हर आत्मा के अंदर उनकी कमियों को ना बता के उनके दिल में भगवान की जो अमृत वाणी है उसके प्रति प्यार जागृत करते जाएंगे, जागृत करते जाएंगे, वो पढ़ के अपने आप ही उनमें परिवर्तन आता चला जाएगा, है ना। जैसे बाबा कभी कभी, अभी पिछले दिनों की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे काम क्रोध लोभ ये 3 ऐसे कांटे हैं, 3 कांटों के बारे में भी एक दिन बताया था बाबा ने, काम क्रोध लोभ मोह, ये 3 ऐसे कांटे हैं जो आत्मा को बिल्कुल परेशान कर डालते हैं, कमजोर कर देते हैं। अभी आप सोचो जब कोई मुरली पढ़ेगा तो उसके अटेंशन में आएगा ये काम ये क्रोध ये लोभ, और अगर किसी आत्मा के अंदर ये बात आ जाए कि चलो मैं सबसे पहले क्रोध को ही अपने अंदर से निकाल के कोशिश करता हूँ, व्रत लेता हूँ, जैसे अभी 9 दिन के व्रत थे तो उन 9 दिनों में उन्होंने व्रत लिया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। एक विधायक आए थे तो उन्होंने ये प्रेरणा लेके गया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, और उसने सचमुच अपने अंदर चेंज किया। तो क्रोध न करने से उसको कितनी शक्ति मिली और धीरे धीरे बाबा की मुरली के प्रति कितना प्यार उसके दिल में बढ़ता चला गया, उनके अंदर आपे ही बारिश बनने की क्वालिटी पैदा होने लगती है। अभी बहुत जल्दी ही बाबा ने मुरली में एक दिन बताया था, बच्चे मैं आया हूँ तुमको 21 जन्मों के लिए तुम्हारा इंतजाम करने के लिए। आप सोचो भगवान कितनी अच्छी अच्छी बात कहता है, तुमको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी कमाई की। और फिर बाबा ने रविवार की मुरली में कहा कि बच्चे तुम तन लगाते हो तो मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए स्वस्थ तन देता हूँ, मन लगाते हो तुम्हारा मन स्वस्थ रहता है, तुम्हारे संबंध स्वस्थ होते हैं, बहुत सुख मिलता है। और अगर धन लगाते हो तो धन आखिचार मिलता है, पदम गुणा होके मिलता है। समय लगाते हो तो तुम्हारा समय बहुत तुम्हें ऊंची स्थिति तक ले जाता है। तो बाबा की वाणी, अभी जो समय चल रहा है, मैंने ऐसे अपने अंदर रीडिंग किया है कि केवल और केवल कोई आत्मा उसको कुछ भी ज्ञान ना मिले, 7 दिन का कोर्स तो कर ले ताकि समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, और फिर वो बाबा की वाणी सुनता चला जाए, उसके अंदर स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन ही नहीं होगा लेकिन साथ साथ वो महसूस करेगा कि मैं अपनी कमियों को अपने अंदर से कैसे निकाल सकता हूँ। और जितना जितना वो स्वयं पुरुषार्थ करेगा, आपने महसूस किया होगा किसी की कमी को बताओ तो वो और ही कमजोर हो जाता है, क्या करूँ मेरे अंदर तो ये कमी है, वो अपने को बहुत डिप्रेशन में फील करने लगता। अभी बाबा ने कहा था ना अभी 4 दिन पहले, 2 दिन पहले की, कि एक आत्मा को पश्चाताप क्यों होता है, अप्राप्ति के कारण पश्चाताप होता है। और अप्राप्ति क्या है, अगर उसके अंदर अपने अंदर सहन करने की शक्ति या अन्य प्रेम की शक्ति, अगर सपोज वो ये सोचे मुझे बाबा से पूरा मन नहीं जुड़ रहा है, मुझे बाबा से पूरा प्यार नहीं मिल रहा है, वो भी उसे अप्राप्ति जैसा लगेगा। या उसके अंदर कोई पोस्ट पोजीशन पाने की संकल्प है और वो उसे नहीं मिल रहा है तो भी उसे अप्राप्ति होगी और उसे पश्चात, या उसने पास्ट के समय में कुछ नुकसान कर दिया है तो भी उसे अंदर से अप्राप्ति होगी और वहीं उसको परेशानी, मन में दुख और अशांति शुरू हो जाती है। लेकिन बाबा का साथ यदि धीरे धीरे वो करना शुरू कर देता है, सचमुच बाबा इस समय वरदानों से हमारी झोली भर रहा है। आप प्रैक्टिकल, आप लोग भी सब अनुभवी होंगे, यदि आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है और आप बाबा के कमरे में गए, आपने बाबा के सामने अपनी बात रखी, बाबा ये काम तो आपके जिम्मे पे है, अब तो मेरा काम नहीं रह गया, ये आपका काम है, आप जानो, मैंने देखा है वो काम होके ही रहता है अगर उसमें आपकी शुभ भावना भी है। और यहां तक कि बाबा हम बच्चों के लिए पहले भक्ति मार्ग में कहते थे भगवान हर कण में है, लेकिन हर कण में नहीं है, भगवान हर पल में हमारे साथ है। अभी बहुत जल्दी हमारे क्लास में आने वाले एक युगल मुहूर्त, तो वो सुबह भाई वॉकिंग पे निकल गया, पत्नी जो थी, बारिश हो रही थी, पत्नी ने पंप का गेट बॉल खोला, दरवाजा बंद करके, वो उसको पता नहीं कैसे करंट ने पकड़ लिया। अब उसने सोचा कि मैं तो गई, अभी कोई साथ में है भी नहीं सामने, बस उसने चिल्लाया बाबा अब तो तुम ही बचाओ। और वो इतना चित था कि उसी समय लाइट चली गई, क्या हुआ, बाबा ने उसको बचा लिया। ये आजकल बहुत आत्माओं के साथ हम घटनाएं सुने तो देख रहे हैं, कितना कितना हमारे ही क्लास वाले रोज अपना अपना सुनाते रहते हैं, दीदी ऐसा हो गया ना तो हम बच गए, बाबा ने बचा लिया। तो बाबा हर पल हमारे साथ है, न कि भगवान कण कण में है। और हम अपने अंदर ये विश्वास करके चलें कि हम वो भाग्यशाली आत्मा है, हमने कोई बहुत अच्छा पुण्य का कार्य किया था। मैं तो प्रतिदिन अपने मन में सोचती हूँ, मैंने कोई बहुत अच्छा पुण्य का कार्य किया था। पहली बात तो मेरी बुद्धि ने बाबा को पहचाना, और बाबा को पहचानने के बाद फिर मैंने बाबा को दिल से प्यार किया, बाबा तू ही हमारा है, ये भी तो हमारा कोई अच्छा पुण्य का खाता था जो हमें बाबा से इतना प्यार मिला और प्यार किया। तीसरी बात, बाबा मिला तो हमें इतना सुंदर दैवी परिवार मिला। आप लोगों को नहीं लगता है हमको कितना सुंदर ये दैवी परिवार मिला? क्यों ये परिवार अच्छा लगता है? क्यों नहीं बाहर का संसार अच्छा लगता है? क्यों ये परिवार अच्छा लगता है? क्योंकि इस परिवार के अंदर नियम है, संयम है। हम लोगों ने सबने व्रत लिया है, जो भगवान कहेगा वैसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। पहला पवित्रता का बल हमारे पास है ना, कहते हैं ज्ञान बल हो हमारे पास, योग बल हो और पवित्रता का बल हो तो आत्मा बलवान है, शक्तियां हैं सारी मेरे साथ। तो हमें एक ऐसा परिवार बाबा ने दिया जिनके अंदर ये तो दृढ़ संकल्प है कि हम ब्रह्मचर्य में रहते हुए अपने पवित्रता के बल को कायम करेंगे, और हम सदैव योग बल में रहते हुए बाबा के साथ अपने मन को लगा के हम अपने मन का मीत बना के हम अपने को शक्तिशाली बना लेंगे, ये तो मेरे अंदर है ना। तो हमें इतना सुंदर, फिर हम अपनी दादी जानकी को देखते हैं और बड़ी दीदियों को देखते हैं, बड़ी दादियों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है ये विचित्र संसार है और हम उसके भांति हैं, ये मेरा एक बहुत बड़ा भाग्य है। तो ये सब देखने के बाद में अपने को बहुत खुशी होती है, चलो हम बच गए। किससे बच गए? संसार में, उस गंदे संसार में जाने से बच गए, नहीं तो न जाने कितने कितने आत्माओं का हमारे ऊपर बंधन होता। अभी बाबा ने हमको अपनी गोद में बिठा लिया है, और किसने बिठाया? जो गारंटी करता है हर बात की। किस बात की गारंटी करता है? बच्चे मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के भी नहीं जाने वाला हूँ, क्यों? मैं तो आया ही हूँ तुमको ले चलने के लिए। कहाँ ले चलने के लिए? जो तुम्हारा प्यारा धाम था, जहाँ तुम मस्त रहते थे, तुम्हें कोई बंधन नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। हाँ, तो देखो सन्यासी लोग कितनी तपस्या करते रहे लेकिन उस धाम तक नहीं पहुंच पाया उनका मन, और हमको बाबा ने इतना इजी कर लिया कि दूसरे तीसरे ही दिन आत्मा कहती है हाँ, हम परम धाम में अपने मन को ले जा रहे हैं बाबा के पास। तो हमको हमारा घर मिल गया, और सबसे ज्यादा तो खुशी हमको किस बात की होनी चाहिए कि हमें ऐसा सदगुरु बाप मिला कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमने कई जन्मों में न जाने क्या क्या क्राइम्स किए होंगे, आत्मा के ऊपर न जाने कितने पाप के खाते रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसा बाबा मिला कि वो ऐसा नहीं कहता कि तुम गंगा में खड़े हो जाओ तो तुम्हारा ये पाप धुलेगा, या तुम 20 दिन खाना ना खाओ तो तुम्हारा पाप धुलेगा, लेकिन कहता है अपनी स्मृति को जागृत करो। भले तुम राज ऋषि हो, खाओ पियो, नियम संयम में रहो, लेकिन तुम्हारा मन किस में चला जाए? बाबा में चला जाए। तो जब हमारा मन बाबा में जाना शुरू कर देता है तो बाहर की रगें जो है हमारी क्योंकि ये जो मन है ना, ये भटकता है, इसको एक सहारा चाहिए, इसको प्यार चाहिए, इसको अपने हर प्रश्न का उत्तर चाहिए। ये मन बहुत भटकता है, लेकिन उस प्रभु का जो प्यार हमको, उसका जो आंचल मिलता है, एक बहुत खुशी होती है। किस बात की? हमारे इस अंतिम जन्म में ऐसा तो हमें सहारा मिला जो हमें हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने वाला है। हम हल्की आत्मा बन जाएं, हम परी जैसे फरिश्ते बन जाएं, स्वतंत्र आत्मा बन जाएं, मन का भी कोई बंधन ना रहे, बुद्धि का भी कोई बंधन ना रहे, विकारों का भी कोई बंधन ना रहे, मैं अपने में हल्की आत्मा बन जाऊं। ये किसने हमको शक्ति दी, ये किसने शक्ति दी, किसने बुद्धि दी? एक कॉन्फिडेंस जागृत हो गया हमारे अंदर। किस बात का कॉन्फिडेंस जागृत हो गया? कोई है जो मुझे मुक्ति दिला देगा, और वो मेरा एक ऐसा सहारा है जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, और वो जो कहेगा इट विल बी हैपन, जो वो होके ही रहेगा, है ना? वो जो कहेगा वो होके ही रहेगा। तो अपने को एक राहत मिली। इस जन्म में हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन बाबा मिला। उसने हमें पापों से मुक्त होने का रास्ता दिखा दिया। आज आप बताओ, दुनिया में लोगों के पास, किसी किसी के पास बहुत करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन विश्व क्षितिज में हम देखते हैं समझ की कमी होने के कारण, ये लालच की वृत्ति के कारण, वो बड़े बड़े गवर्नमेंट के स्टेटस पर होने के कारण कहें या होने में होने के कारण कहें, कि वो इतना बड़ा बड़ा गलती कर लेते हैं कि लास्ट उनका बहुत खतरनाक होता है, है ना? और बाद में उनकी पूरी लाइफ क्राइम करते करते निकल जाती है। बाद में जब वो पकड़े जाते हैं, उनको जेल में जाना पड़ता है, तब वो कहते हैं हमें कोई एक ऐसा ब्लॉटिंग पेपर मिल जाए, जो मैंने जीवन भर गलत काम किया है, भगवान ने मुझे पद भी दिया था, पैसा भी दिया था, सब किया, बट मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया गलत काम करके, आज मैं जेल में पड़ा हूं। फिर वो एक ऐसे ब्लॉटिंग पेपर को ढूंढते हैं कि मेरे पूरे जीवन का जो पाप है मैंने किया है वो सब हट जाए और मैं फिर से अच्छा इंसान बन जाऊं। तड़पते हैं वो लोग। हम लोगों को अपने को तौलना चाहिए। भले हम विश्व क्षितिज पे साधारण लेवल में हो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की नजरों में हम बहुत वैल्यूबल हैं। क्यों वैल्यूबल हैं? क्योंकि हमने उसकी बात को मान लिया, हमने किसी गलत काम से अपने को बचा लिया, और ये हमारा जीवन जो था ना, जो एक खेती के रूप में है, इसमें हमने छोटा छोटा भी पुण्य का कर्म करके बहुत अच्छी पुण्य की कमाई को जमा करते चले। भले हमारे पास धन ना हो ज्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पाई पाई भी जोड़ के हमने बाबा के कार्य में लगा के अपने पद्मों की कमाई को जमा कर लिया। तो हम ऐसे, वो जो लोग जेल में चले जाते हैं या ऐसे लोग क्राइम करते हैं, वो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनके पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं, गलत बुद्धि से चलते हैं, अपने जीवन इतना मूल्यवान जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो हम लोगों को किस लिए अपने को थैंक्स देना चाहिए? कम से कम हमें भगवान ने अच्छी बुद्धि दे दी और हमने भगवान की बात को मान लिया, तो भगवान की बात को मानने से हम न जाने दुनिया के किस रास्ते पे जाके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। आज हमारा यही श्वास है, यही जीवन, बहुत सार्थक होता जा रहा है और हम शक्तिशाली आत्मा तो बन रहे हैं, लेकिन विश्व क्षितिज पर एक बट वृक्ष के रूप में बहुत आत्माओं को जीए दान देने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा हमको कहता है, बच्चे कभी अपने को साधारण आत्मा नहीं समझो, तुम तो बहुत, मैं जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, तुम अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझो। आपने सुना होगा बाबा से जो कोई बच्चे मिलते हैं तो बाबा किसी किसी को बहुत प्यार की नजर से देखते हैं, क्या वरदान देते हैं, कोटों में कोई, कोई में कोई और कोई में भी कोई, तुम एक विशेष आत्मा हो। आप देखो जिसकी महिमा भगवान बैठ के करे कि कोई में भी कोई तुम एक विशेष आत्मा हो, सोचो तो वो आत्मा भले अपने को नहीं पहचानती है, लेकिन वो कौन सी आत्मा जिसको ईश्वर अपनी नजरों में बहुत ऊंचा मान चुका है और ईश्वर ने सोच लिया है कि मुझे इस बच्चे का को स्थापना के कार्य के लिए मैंने इसको निमित्त बनाया है, तो इसके द्वारा बहुतों को जीए दान मिलने वाला है। नहीं तो कोटों में कोई विशेष आत्मा भगवान हमको क्यों कहे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भगवान को पाया है और हम कभी भी अपने इस रास्ते से कभी विचलित नहीं होंगे। बाबा कहते हैं ना, बच्चे माया के बहुत तूफान आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत परे, रोज की मुरली में बाबा का निकलता है। अभी दो दिन पहले मैं मुरली में का, शायद मैं कल ही पढ़ ली थी, बाबा ने कहा मैं विश्व की एक एक आत्मा का भाग्य जगाने के लिए आया हूं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हम तो ये समझते थे जो भगवान के पास आएगा उसका भाग्य जगेगा, लेकिन भगवान ने डिक्लेयर कर दिया मैं विश्व की एक, मैंने फिर उस लाइन को दो बार तीन बार अगेन एंड अगेन पढ़ा कि मैं विश्व की एक एक आत्मा का भाग्य जगाने के लिए आया हूँ। कैसे जगेगा? कभी आप लोगों ने विचार किया विश्व की एक एक आत्माओं का भाग्य कैसे जगेगा? उसका कारण है हमारी ये यूनिफॉर्म। हम जब अपने यूनिफॉर्म में बाहर निकलते हैं, भले वो लोग हमसे परिचित न होने के कारण हमसे मिल नहीं पाते हैं, हमसे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन दूर दूर से वो कुछ विशेष देखते रहते हैं और वो जो हमारा पवित्रता का वाइब्रेशन है, जो हमारी प्यार की दृष्टि है, जो हमारे शुभ संकल्प हैं, जो शुभ भावनाएं हैं, वो शुभ भावनाएं उन आत्माओं के मन के अंदर कुछ ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि उनको एक बार याद आ जाता है ये भगवान के बच्चे हैं। और उनको एक बार भी उन्होंने अगर हमको देखा और अंदर से बुद्धि में आया कि ये भगवान के बच्चे हैं, तो उनको सेकंड संकल्प क्या चलेगा, इनको ऐसा बनाया किसने? कोई मनुष्य तो इनको नहीं बना सकता है। फिर उनको अंदर से क्या विचार आता है, कुछ नजदीक जाकर सुने कि इनको पढ़ाता कौन है, इनको ऐसा कौन बनाता है? किसी आत्मा के अंदर अगर हमको देख के थोड़ा सा भी शुभ संकल्प आता है और थोड़ा भी उसका विचार अच्छा बनता है, समझ लो उसका भाग्य बन जाएगा, है ना। तो इसलिए जो बाबा के आज लाखों रतन पैदा हो गए हैं, कभी अपने को कम नहीं समझना, कभी हमें ऐसे सोचना नहीं कि हम तो इतना सुंदर ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। नहीं, हम बहनें जब किसी को ज्ञान सुनाने जाते हैं तो हम बाबा को कहते हैं बाबा आप ही सुनाना, हम तो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, आप भी अपने मन के अंदर कोई आत्मा आपके सामने जाती आती है तो एक शुभ भावना से मिलो। और ये कभी मत सोचो कि हम कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ज्यादा उलझो भी नहीं, फिर थोड़ा बता के उनके अंदर थोड़ा बाबा के प्रति खेंच हो जाए, फिर उनको बाबा के घर का एड्रेस दे सकते हैं, है ना। तो हमेशा अपने अंदर से इस बारी जो आप बाबा के घर में आए हैं तो एक संकल्प लेके जाना, हम बाबा के बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शिव बाबा आया है अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ के उनका भाग्य जगाने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के कार्य के लिए हम भगवान के मददगार बच्चे हैं, हम भगवान के कार्य के लिए आधार मूरत बच्चे हैं। रोज हम अमृत वेला जब उठते हैं तो हम अपने अंदर इस बात का संकल्प करें, मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। और आज मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहती हूँ, बहुतों को ये शिकायत होती है कि जब हम रात में सोने जाते हैं तो जल्दी नींद नहीं आती। इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई कि जीवन में चलते चलते कोई आत्माएं आपके मन के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, कोई विरोध में आ जाती हैं, कोई आपसे थोड़ा सा आपकी बात को नहीं मानती हैं। बाबा ने क्या कहा, उन आत्माओं को इमर्ज करके योग का दान देना शुरू करो। तो जब आप रात में सोने जाते हैं तो उस समय ये आपके लिए होमवर्क है, जो आत्मा थोड़ा आपका विरोध कर रही है, जो आपकी बात को नहीं मान रही है, या किसी से आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप उस आत्मा को सूक्ष्म में इमर्ज करके बाबा की याद में योग दान देना, भले लेटे लेटे योग का दान दो, योग का दान देना शुरू करो। भले मन थोड़ा इधर उधर हो, फिर उसको एक लेबल में लगाओ, बाबा ऊपर है, बाबा की प्यार की किरणें, योग की किरणें उस आत्माओं के ऊपर पड़ रही, और आप वो सारा विजन क्रिएट कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल देखिए, मैंने तो देखा है, कितनी भी विरोधी आत्मा हो, जो बात शब्दों से नहीं बनती है, वो योग के द्वारा वो आत्मा परिवर्तन हो जाती है। और अभी जल्दी ही मैंने इस महीने के अंदर एक्सपेरिमेंट किया कि कोई बहन मेरे से एक महीने तक वो थोड़ा नहीं बात कर रही थी, मेरे को लगा कि क्यों नहीं, तो मैंने उनके लिए योग किया और उसने उसका सारा हमारे लिए अच्छा हो गया। तो वो जो रात में हम सोते सोते आत्मा को योग का दान देते हैं, जब हम मॉर्निंग 4 बजे, मैं देखती हूँ बाबा अपने आप ही 2:30-3 बजे उठा देता है, तो उस समय हमारे सामने एक होमवर्क होता है। कौन सा होमवर्क होता है, कि हम वही आत्मा सामने इमर्ज होती है। तो जब हमारा एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट ठीक होने लगता है ना, तो फिर हमारे सामने कई सारी आत्माएं आने लगती हैं। अरे इसको भी योग का दान दो, इसको भी योग का दान दो, इसको भी योग का दान दो। देखो अमृत वेले में आप बिजी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं अब बस जल्दी से 4:45 बजे और हम उठें, बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आता अमृत वेले। और ऐसा लगता है कि न जाने कितनी सारी आत्माएं मेरे सामने आके खड़ी हो गई हैं और इमर्स हो रही हैं, और मैं उनको योग का दान देती जा रही हूँ, योग का दान देती जा रही हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा तुम भी मास्टर वरदानी बच्चे हो, है ना। तो आप लोग कभी भी योग को कठिन नहीं समझना। हम लोगों में से कोई ये कह ही नहीं सकता है क्या करें, मेरा तो योग लगता ही नहीं है, लेकिन योग लगाने के ये सब बहुत सुंदर सुंदर तरीके हैं, और आप बहुतों को योग का दान देके अपने को योगी राज बना सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे अंदर जितनी जितनी हम योग बल के द्वारा अपने अंदर के विकारों को भी दग्ध करते जाते हैं। एंड आल्सो हमारे अंदर एक जरूर एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे अंदर जो हमारी सहन करने की शक्ति है, जितना जितना हम बढ़ाते जाएंगे, हम अच्छे त्यागी बन जाएंगे, अच्छे तपस्वी बन जाएंगे और सफल अपने जीवन को बना के बहुतों के लिए हम एक कहना चाहिए एग्जाम्पल बन जाएंगे और लोग हमारे जीवन के चरित्र को देख के उनके लिए एक सैंपल बनेंगे और बहुत लोग हमसे, बहुत आत्माएं हमसे जीए दान लेंगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे।